क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवभरत सिरतन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको याद दिला दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है, जिनके महासचिव हैं प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा जी। प्रिय श्रोताओ, आज के कार्यक्रम के लिए जो विषय चुना गया है वो है अध्यापन कार्य और कविता लेखन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में पधारे हैं श्री गौतम लाल बिहारी जी। उनके व्यक्तित्व और उनके अनुभव के बारे में दो शब्द। श्री गौतम लाल बिहारी जी इन दिनों सेकेंडरी स्कूल अर्थात सरकारी माध्यमिक स्कूल के शिक्षक हैं। इससे पहले आप सरकारी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रह चुके हैं। आपने बीए हिंदी विद एजुकेशन की डिग्री फर्स्ट क्लास ऑनर्स से पास की है। इसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन से एमए एजुकेशन की डिग्री हासिल की है। रेखांकित करने वाली बात यह है कि साल 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन में आपको शिक्षा मंत्रालय की ओर से आउटस्टैंडिंग हिंदी एजुकेटर के खिताब से सम्मानित किया गया था। हिंदी शिक्षक होने के साथ साथ श्री गौतम लाल बिहारी जी हिंदी साहित्य लेखन में रुचि रखते हैं। आप कविताएं भी लिखते हैं। इसके अलावा आप सामाजिक व धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं। आप कई संगठनों के अध्यक्ष हैं। पिछले साल से श्री गौतम लाल बिहारी जी मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के महासचिव का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री लाल बिहारी जी नमस्कार।
नमस्कार।
स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्री लाल बिहारी जी, कृपया बताइए कि आप कितने सालों से अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं?
पहली बात तो ये है कि मैं क्षितिज कार्यक्रम के जितने भी श्रोतागण हैं उनको मैं नमस्कार और अभिवादन करता हूँ। जैसे आपने अभी पूछा कि कितने सालों से मैं अध्यापन कार्य में रहा हूँ, तो अब तक मैं 32 सालों तक हिंदी शिक्षक के नाते, वो प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक, मैं अभी तक कार्य करता आ रहा हूँ।
कुछ शिक्षकों का कहना है कि अध्यापन कार्य आसान नहीं है, पर इतना तो निश्चित है कि आज के दौर में अध्यापन कार्य चुनौतीपूर्ण है। आपके क्या राय है?
देखिए, अध्यापक होना कला भी हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि अध्यापन कार्य कला के साथ साथ विज्ञान की भी बात होती है उसमें।
जी,
कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके अंदर वो जागरूकता हो, वो आस्था हो कुछ करने के लिए, आपके अंदर वो कौशल हो, वो क्षमता हो अध्यापन कार्य के लिए, वो रुचि हो, तो उससे आप अध्यापन कार्य कर सकते हैं। लेकिन अध्यापन कार्य करने के लिए जो भी क्षमताएं होती हैं, जो भी कौशल होते हैं, उसकी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जहां तक हम बच्चे का जो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान की जब बात करते हैं, तो उसको जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो मेरे कार्यकाल में 1988 से जब से मैंने आरंभ किया, आज तक लगभग 10 सालों तक मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2 साल प्राथमिक प्रशिक्षण, 3 साल मैं डिप्लोमा के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करता रहा, फिर उसके बाद में 2 साल मैंने एमए एजुकेशन जब किया, तो उसके अंतर्गत भी मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। और इसके अंतराल में आते जाते काफ़ी ऐसे ही कार्यशालाएं रही जहां पर मैं इस क्षेत्र में अपने आप को, अपने ज्ञान को बढ़ाता रहा हूं।
तो अध्यापन कार्य की शुरुआत आपने प्राइमरी स्कूल से की थी, फिर आप सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना और सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाना, एक अध्यापक के रूप में आप क्या अंतर करते हैं?
देखिए, बच्चे मासूम होते हैं। जब बच्चे आपके सामने आते हैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में जब हम पढ़ाते हैं उनको, तो वे मासूम होते हैं, उनके अंदर जो भाषा संबंधी क्षमताएं होती हैं वो अभी तक जागरूक नहीं होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी को लेकर खासकर हमारी मातृभाषा तो नहीं है, वो तो द्वितीय भाषा के रूप में हम पढ़ाते हैं स्कूलों में। तो जब तक आप बच्चों में जितने भी चार कौशल है, जो कौशलात्मक ज्ञान है, उनके आधार पर, जैसे मैं कह रहा हूँ, जो श्रवण है, भाषण है, वाचन है, और अंत में जो लेखन है, अगर उनके आधार पर आप अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, तो बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर वो जो रुचि जागृत करने की जो क्रिया होती है बच्चों में, इस प्रकार हम उत्प्रेरणा के अनुसार हम उनमें बढ़ा सकते हैं। तो जब बच्चे पढ़ना आरंभ करते हैं, श्रवण करते हैं, भाषा श्रवण से आती है, फिर उसके बाद में जो तीन कौशल होते हैं उसका हम विकास कर सकते हैं।
अर्थात जो बच्चा सुन नहीं पाता है वो बोल नहीं सकेगा, इसलिए श्रवण करना जरूरी है। और जो कुछ वो सीखता है श्रवण के माध्यम से उसी को बोलता है।
ये सच है। देखिए, हिंदी भाषा जो है उसको हम सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा मानते हैं।
जी,
मतलब जैसे आप सुनते हैं उसी प्रकार आपको बोलना होता है। तो श्रवण के आधार पर ही हम भाषा का ज्ञान आगे बढ़ा सकते हैं।
श्री लाल बिहारी जी, अन्य देशों में और मॉरिशस में भी इन दिनों हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या घटती जा रही है, इसका क्या कारण हो सकता है?
देखिए, हमारे देश में जहाँ तक जन आबादी है वो घट रही है, पहली बात तो ये है।
हाँ,
तो इसके साथ साथ हमारे बच्चे भी, जितने बच्चे पहले भर्ती होते थे अब थोड़ा कम भर्ती हो रहे हैं हमारी पाठशालाओं में। इसके साथ साथ हमारे देश में जो मैं कहूँगा मध्यवर्गीय जो लोग हैं आज इतने संपन्न हैं कि वे अधिक से अधिक जो विदेशी संस्कृति है, विदेशी जो भाषाएं हैं उनको अधिक मान्यता दे रहे हैं। और जो बैठकाएं हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ पर बहुत कम बच्चे अब जाते हैं। जो आपाधापी का जीवन है आज, और जो प्रतिस्पर्धा से युक्त जीवन है, उसमें हमारे जो अभिभावकगण हैं वे हिंदी को इतनी मान्यता न देकर दूसरी भाषाओं को, दूसरे विषयों को मान्यता दे रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने धर्म को जागरूक रखना चाहते हैं, कि नींव को अधिक सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो आपको अवश्य हिंदी पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से ये सबसे भारी समस्या है कि आज एक प्रकार से जो हमारे उच्च मध्यवर्गीय जो लोग हैं वे लोग अधिक से अधिक जो फी पेइंग स्कूल हैं, जहां पर हम शुल्क चुकाकर हम क्या कहते हैं शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वहां पर ऐसी कम पाठशालाएं हैं जहां पर हिंदी की पढ़ाई होती है। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि हमारे जो लोग हैं भाषा के संसर्ग में नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भाषा तो हम ग्रहण करते हैं सुनकर, जैसे मैंने कहा, और बोलकर, तो बोलने का जो माहौल है, का जो पर्यावरण है, वो थोड़ा थोड़ा कैसे कि कम होता जा रहा है
जी।
फिर बच्चे जो हैं अधिकाधिक दूसरी संस्कृतियों से जो जुड़ रहे हैं
उससे प्रभावित हैं। श्री लाल बिहारी जी, शिक्षक होने के नाते आपका और एक पहलू है, आपके व्यक्तित्व का और एक पहलू है, वो है कविताएं। आप कविताएं किस लिए लिखते हैं, कैसे लिखते हैं?
मैं आपको एक सच बात कहूं, जब मैं छोटा था, बैठका में पढ़ता था, तो मेरे गुरुजी थे, उसका अब देहांत हो गया, तो उसने कहा कि तुम क्यों लिखते नहीं हो। तो उस जमाने में मैंने दो तीन कविताएं लिखी थी, जो रिमझिम और आक्रोश में। उसके बाद मैं इतना व्यस्त हो गया और खेती बाड़ी से मैं इतना लगाव था मुझे कि समय नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि समय नहीं मिला, कहने का तात्पर्य ये है कि इस ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन बहुत सालों बाद, मैं कह सकता हूँ 40-42 साल बाद, अभी जब महामारी के कारण ये कन्फाइनमेंट हुआ
जी,
तो मेरे मन में आया कि
कुछ
जितनी भी समस्याएं हैं इस विश्व में, अगर मैं इन समस्याओं के बारे में कुछ लिखूं और लोगों तक पहुंचाऊं तो एक प्रकार की संचेतना जागृत हो सकती
ठीक
है।
शिक्षा मंत्रालय ने साल 2018 में आपको आउटस्टैंडिंग हिंदी एजुकेटर के अवार्ड से सम्मानित किया था, इस पर कुछ खुलासा दीजिए।
जैसे मैं कह रहा था कि 32 सालों के कार्यकाल में मैंने बहुत ही निष्ठा और बहुत ही सजग होकर मैंने अपना कार्य किया है, और मेरे लिए पारितोषिक का कोई मायना नहीं है
जी।
हम तो काम कर रहे हैं, सरकार हमें वेतन दे रही है, लेकिन काम के प्रति जो निष्ठा भाव है उसको मैंने हमेशा बरकरार रखा है। और जब हमारे देश में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा था, तो उससे पहले मंत्रालय की ओर से एक प्रतियोगिता रखी गई थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम इसमें क्यों भाग नहीं लेते हो, तो मेरे जितने भी हितैषी लोग थे उनके प्रोत्साहन से मैंने किया ये। और जब मुझे लगा कि मेरा एक योगदान है हिंदी को लेकर, हिंदी भाषा के उत्थान को लेकर, तो मैंने आवेदन भरा और उसमें मैं मुझे चुना गया। और इसके लिए मैं न केवल मॉरिशस की सरकार बल्कि भारतीय सरकार की मैं आभारी हूँ।
तो आप बधाई के पात्र हैं।
धन्यवाद
श्री गौतम जी। थोड़ा सा हटकर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, वो यह है कि पिछले साल से आप मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के महासचिव का कार्यभार संभाल रहे हैं, ये तो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, इस पर दो वाक्य बताइए।
मैं तो हमेशा से स्वयं सेवा के कार्य में रहा हूँ, और मुझे लगा कि अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के लिए, अगर तो आपको बाहर नहीं रहना चाहिए, मतलब सिस्टम के अंदर आना है।
बिल्कुल।
तो इसीलिए मैंने गत साल वो जो चुनाव लगा था उसमें मैंने महासचिव का जो पद है उसके अनुसार मैंने चुनाव लड़ा, और आज मैं वहाँ पर हूँ और भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति और भाषा है, उसके उत्थान के लिए मैं कुछ न कुछ करूँ और थोड़ा सा पद चिन्ह छोड़ कर जाऊँ।
और एक प्रश्न छोटा सा, मॉरिशस में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर आपके पास कोई योजना है?
अभी देखिए, मैं थोड़ा सा अभी कन्फाइनमेंट के अंदर थोड़ा सा खोज कार्य कर रहा हूँ, आर्य सभा को लेकर, मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन को लेकर, हिंदी प्रचारिणी सभा को लेकर। हम देखना चाहते हैं कि कितनी हमारी बैठकाएँ और कितनी हमारी बैठकाएँ कार्यरत हैं, ठीक से काम कर रही हैं, और इसके आधार पर हम कुछ ठोस करना चाहते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो तो पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, उन लोगों के पास बहुत कम समय है, लेकिन इस कम समय में हम भाषा, खासकर हिंदी भाषा को, भोजपुरी को, संस्कृत को, अगर हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, बच्चों में ये जागरूकता पैदा कर सके ताकि वे आकर पढ़ लिख सके, तो हम मंच तैयार कर रहे हैं।
प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा आक्षेपित कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि आप थोड़ी देर पहले श्री गौतम लाल बिहारी जी को सुन रहे थे। मैं डॉक्टर देवव्रत सिरतन आप श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं आपके ध्यान के लिए। तकनीकी सहयोगी मित्र रामा को भी धन्यवाद है, और विशेष धन्यवाद श्री गौतम लाल बिहारी जी को जाता है। आप व्यस्त होने के बावजूद आपने इस कार्य में भाग लेना स्वीकार किया, नमस्कार।
धन्यवाद।
क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।